ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 15 बलि महाराज द्वारा सर्ग पर विजय श्लोक संख्या 28। तो जैसे कि हम परसों 14वें अध्याय का समाप्ति किए तो 15वें अध्याय में पहले श्लोक से लेकर 27 श्लोक तक प्रभुपाद ने कोई तात्पर्य नहीं दिए, भले बीच में एक श्लोक में तात्पर्य दिए हैं छोटा सा, लेकिन हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। 28 नंबर श्लोक। श्री गुरु वाच जनामि मधवन शास्त्रो उन्नतेह अस्य कारणम् शिष्याय उपभूतम् तेज भृगुभि ब्रह्मवादिभि। श्रीगुरु वाच जानामि मधवन शास्त्रो उन्नतः अस्य कारणम् शिष्याय उपभूतम् तेज भृगुभि ब्रह्मवादिभि। श्री गुरुर्वाच जानामि मधवन शास्त्रो उन्नतः अस्य कारणम् शिष्याय अपभूतम् तेज भृगुभि ब्रह्मवादिभि। श्री गुरुर्वाच जानामि मधवन शास्त्र कारणम् शिष्यापवृतम् तेजो भृगुभि ब्रह्मवादिनः। श्री गुरुर्वाच जानामि मधवन शास्त्र देहस्य कारणम् शिष्याय उपभृतम् तेज भृगुभि ब्रह्मवादिभि। सहनामि भगवन्त्रो विद्धितेऽस्य कारणम् शिष्याय उपभृतं तेज ऋगुवे ब्रह्मवादिवे। माताएं शब्दार्थ श्री गुरुवाच। बृहस्पति ने कहा जानामि जानता हूँ मधुबन हे इंद्र शस्त्रो शत्रु की उन्नते उन्नति का अस्य उसका कारणम कारण शिष्याय शिष्य को उपभूयतम प्रदत्त तेजः शक्ति भृगुभि भृगुवंशियों द्वारा ब्रह्मवादिभि सर्वशक्तिमान ब्राह्मण द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा हे इंद्र मैं वह कारण जानता हूँ जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशज ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। तात्पर्य देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र के बताया सामान्यतया बलि तथा उसकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी किंतु ऐसा लगता है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशज जो बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र के यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं अपितु उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य का है। यह नित्य ही स्तुति करते हैं। जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद जस्य प्रसादेन अगति पुतोपि। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। गुरु के अशेष ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले तेज प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तेते करिया ऐक आरना करिह मने आशा। विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन करे। इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक शक्ति मिल सकती है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजसूयो विदु। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुरुपिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदं तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगणा ललिता श्री विशाखानितं सा नमोम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो इस श्रीमद्भागवतम की कथाओं को जो सुना है इसको बोलने से पूर्व मैं सभी वरिष्ठ भक्त सभी वैष्णव और मुख्यतः हिज ग्रेस तिलकनंदन प्रभु जी का आशीर्वाद चाहता हूं, जिससे कि मैं भगवान के इस वाणी दिव्य ग्रंथ को इस श्लोक के ऊपर कुछ बता सकूं। तो इस अध्याय के शुरू में कोई तात्पर्य नहीं है, जिसके कारण इस श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये अष्टम स्कंद का 15वें अध्याय जो कि भगवान की वामन लीला की शुरुआत करती है, यहां से इस अध्याय से भगवान वामन का चरित्र सुखदेव गोस्वामी ने शुरू करेंगे, इसलिए उसको आधार बनाकर उस कथा को शुरू करेंगे। क्योंकि पूर्व श्लोकों में पूर्व अध्याय में हम जैसे जानते हैं इस मूलतः अष्टम स्कंद मनवंतर की कथाओं से आधारित है, क्योंकि तृतीय स्कंद से लेकर शुरू से शंभुमनु के बारे में जब चर्चा हुआ तो आगे जाकर परीक्षित महाराज ने प्रश्न करते हुए वो अन्य मनुओं के विषय में सुनना चाहते थे। तो जैसे हम जानते हैं ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, इसी प्रकार सभी मनुओं का कथाओं को वर्णन करते करते जब सुखदेव गोस्वामी अष्टम मनु के कथाओं को कहने लगे और इसमें वामन देव की चरित्र आया और इसमें बताया कि किस प्रकार वामन देव बलि महाराज से 3 पग भूमि का दान मांगेंगे, इसके ऊपर इस अध्याय में 15वें अध्याय में शुरू के श्लोकों में परीक्षित महाराज का प्रश्न है, जहां महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति के भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी, और जब उन्हें मुंह मांगा दान मिल गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया। मैं इन विरोधाभास के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। तो ये पहला श्लोक और दूसरा श्लोक में परीक्षित महाराज का प्रश्न है। तो तृतीय श्लोक से सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्होंने इस कथाओं को प्रारंभ किया कि किस प्रकार स्वर्ग के राजा इंद्र, जैसे हम जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करने के बाद भगवान के अनेक अवतार उनको अमृत प्राप्त के लिए सहायता किए, और जो इसमें मुख्यतः अमृत जो कलश को धन्वंतरी लेके आए और उस अमृत कलश को असुर द्वारा छीन लेने के बाद फिर भगवान किस प्रकार मोहिनी मूर्ति धारण करके फिर प्रकट होते हैं, फिर देवताओं को सपक्ष में रहकर किस प्रकार उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाते हैं, इसके बारे में वर्णन हुआ। और देखते हैं कि इसके कारण वही क्षीर समुद्र के तट पर ही देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में युद्ध के दौरान बलि महाराज के पास ऐसे अनेक अस्त्र थे, रथ थे कि देवता भी उनसे हारने लगे और जब हार रहे थे तो देवता ने भगवान की शरण लिया। इंद्र ने देखा अब कुछ हमारे शक्ति काम नहीं कर रहा है तो देवताओं ने भगवान की शरण लिया, जिसके कारण भगवान पुनः प्रकट हुए और सभी जो राक्षसों का वध कर दिए। तो वध करने के बाद फिर ब्रह्मा जी के आदेश से नारद मुनि आकर वहां इंद्र को युद्ध रोकने के लिए कहते हैं और जिसके कारण इंद्र ने युद्ध रोका और नारद मुनि के आदेश से असुरगण अपने जो बचे कुचे सैन्य जो आहत हुए थे उनके लेकर शुक्राचार्य के पास जाते हैं और फिर शुक्राचार्य ने किस प्रकार अपने संजीवनी विद्या के आधार पर सभी जो अर्धजीवित थे उनको पुनः शक्ति प्रदान करके जीवित करते हैं, जिसके दौरान ये अध्याय में फिर से इस प्रसंग शुरू होगा किस प्रकार बलि महाराज ने शुक्राचार्य कृपा से, मुख्यतः इस श्लोक में कहा गया है कि किस प्रकार उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मण, तो शुक्राचार्य जो है भृगुवंशी है, जैसे हम जानते हैं भृगु जो है भगवान के भक्त स्थल पे पदाघात किए थे और आज भी भगवान उनके चरण चिन्ह को अपने वक्ष में धारण करते हैं। तो ऐसे वंशज में आने वाले गुरु के शरण में जाकर उन्होंने पुनः उस तेज को प्राप्त किया। तो मूलतः इस अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार असुरों ने गुरु के शरण में जाकर फिर से अपने खोई हुई शक्ति को प्राप्त किए और पुनः किस प्रकार बलशाली हुए। तो उन्होंने फिर से बल प्राप्त कर स्वर्ग लोक पर आक्रमण किए। फिर इस अध्याय में स्वर्ग का वर्णन है, किस प्रकार स्वर्ग का सुंदरता है स्त्रियों के विषय में और उसके वहां के जो बगीचे हैं इसके विषय में वर्णन है। फिर इस बातों को कहते हुए इस श्लोक में, आज के श्लोक में, क्योंकि प्रश्न किए थे परीक्षित महाराज ने इस श्लोक के आगे पहले, तो इस श्लोक में मुख्यतः देवताओं ने प्रश्न किए हैं कि किस प्रकार उन्होंने तेज प्राप्त करके आए हैं। तो इस श्लोक में बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि किस प्रकार क्या कारण क्या है इस ऐसे तेज प्राप्त करने का। तो आगे हम देखेंगे किस प्रकार बलि महाराज ने शुक्राचार्य को पूर्णतः शरणागति होकर उन्होंने सेवा किया, जिससे कारण शुक्राचार्य ने इसे आगे के श्लोकों में बताया, जो पीछे श्लोक है पीछे के श्लोकों में, तो उसमें बताया कि किस प्रकार शुक्राचार्य ने आदेश दिया कि यज्ञ करने के लिए, तो उनको यज्ञ करने के लिए आदेश दिया जिसके कारण बलि महाराज ने उनके आदेश को पालन करते हुए यज्ञ करना शुरू किए और जिसके कारण उनको ऐसा तेज और ऐश्वर्य सब प्राप्त हुआ, जिससे एक रथ निकला और जिसमें उस रथ में अच्युत वर्ण के घोड़े जुते हुए इंद्र के रथ के समान और स्वर्ण के एक धनुष प्राप्त हुआ, दो तरकस, ऐसे अनेक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित एक रथ को प्राप्त किया और जिसके कारण पुनः बलशाली होकर पुनः उन्होंने स्वर्गलोक में आक्रमण करने के लिए तैयारी की। और स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद देवताओं ने उनकी मुखमंडल की आभा और उनकी सैन्य शक्ति को देखकर वो समझ गए कि ये गुरु कृपा से पुनः है बलि महाराज, और इनको अब जीत पाना हमारे बस की बात नहीं है। जिसके कारण उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और वहां जाकर वो पूछते हैं कि 26 श्लोक और 27 श्लोक में इसमें कहा गया है कोई कहीं भी बलि की इस सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता। अब मैं हमें ये प्रतीत होता है जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को पी जाएगा, अपनी जीभ से दसों दिशाओं को चाट जाना चाहता है और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा से अग्नि भड़काने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार इसमें कहा गया है कि किस प्रकार बलि महाराज पूर्ण शक्तिशाली हो गए। तो ये मूलतः गुरु कृपा से ये सब संभव हो पाया। इसलिए इस अध्याय में हमको एक शिक्षा मिलता है कि गुरु की कृपा कितना आवश्यक है, चाहे वो देवता हो या राक्षस हो, कि गुरु की कृपा के बिना उनके जीवन में जीवन निरर्थक है। इसलिए गुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, जस्य प्रसादा भगवत प्रसादा जस्य प्रसादा न गति पूतोपि, कोई गति नहीं है गुरु के कृपा के बिना। तो इसलिए गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में कहते हैं गुरु पादाश्रय दीक्षा, पहले गुरु पादाश्रय फिर दीक्षा, गुरु पादाश्रय दीक्षा साधु मार्ग अनुगमनम स्वधर्म पुच्छा स्वधर्म पुच्छा तुच्छा साधु मार्ग अनुगमनम। ये पहले शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु पादाश्रय हो जाए। तो किस प्रकार गुरु पादाश्रय होना चाहिए, तो इसके बारे में जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न प्रणिप्रश्न न सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञान ज्ञानिनम तत्वदर्शिना। तो हमें गुरु के पास विनम्रता से जाना चाहिए, गुरु के दिए गए सभी आदेशों को इस प्रकार पालन करना चाहिए जैसे हमारा कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे हमारा आचरण होना चाहिए गुरु के प्रति, कि गुरु के प्रति समर्पित होकर जब हम गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु की कृपा से हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे एक कथा आता है श्रीमद् महाभारत में आयुधध्वम्य और उनके एक शिष्य थे आरुणी। तो जो आयुधध्वम्य के शिष्य थे आरुणी, ऐसे वो अपने गुरु के प्रति शरणागत थे कि गुरु के वाक्य पे उनके कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता था। कि जैसे प्रभुपाद यहाँ कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करी आयक्य आरना करी मने आशा, कि गुरु का जो वचन है हमारे लिए वो वेद का रेखा होना चाहिए। तो गुरु जो कहते हैं, क्योंकि जो वास्तविक गुरु होते हैं, आजकल के जैसे गुरु नहीं, तो जो वास्तविक गुरु होते हैं वो अपने मुख से जो वाणी कहते हैं वो शास्त्र अनुमोदित होता है, शास्त्र में बताए गए वाणी को वो कहते हैं। और उस वाणी को जब शिष्य अपने जीवन में पालन करता है तो उसके जीवन में सब प्रकार की ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ जो कहा गया है गुरु मुख पद्म वाक्य, ये हमको स्मरण करना चाहिए, चीते ते करी आयक, और किसी भी प्रकार की हमारा आशा नहीं होना चाहिए। तो ये देखा जाए तो हम इस कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि हम तो आदेश को पालन नहीं कर पाते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो साधु गुरु वैष्णव की कृपा से ये संभव है कि गुरु के इस बात को प्राप्त करें। तो यहाँ आरुणि जो है अपने गुरु के वचन को पूर्णतः वो प्राप्त करके पुनः शरणागत होकर अपने गुरु के वचन को पालन किए, क्योंकि बारिश का समय था, उनके गुरु आयुध धम्य ने उन्हें भेजा कि जाओ जो खेत में पानी घुस रहा है उसका बांध बांधो। इसके कारण आयुध धम्य जाते हैं खेती में, वो प्रयास करते हैं कि उस पानी को रोकने के लिए इससे बांध बांधते हैं। तो बहुत प्रयास करने के बाद इतने तेज बारिश हो रहा था जिसके कारण पानी को कितने भी बांधने पर भी वो नहीं रुक रहा था, और जिसके कारण उन्होंने देखा कि पानी नहीं रुक रहा है, तो उन्होंने क्या किया, खुद सो गए उस बांध के पास। और समय बीतता गया, आयुध धुम्न देख रहे हैं कि शिष्य आरुणि अभी तक नहीं आए, शाम हो चुका है, तो आरुणि को ढूंढने के लिए स्वयं खुद गुरु को शिष्य को लेकर खेतों के और गए, और लेट गए हैं से बांध रोकने के लिए, तो दिख नहीं रहे कहीं, तो ढूंढ रहे हैं। तो फिर उन्होंने आवाज लगाई कि आरुणि आप कहाँ हो, आज आ जाओ। तो जैसे गुरु के वचन को सुने तो आरुणि वहां से उठे और उठकर गुरु के पास आए, क्या आदेश है पूछा। तो ये देखकर के आरुणि पूर्णतः कीचड़ में लोटपोट है और पूरा बारिश में भीग कर देख सकते हो, ज्यादा देर पानी में रहने से शरीर सफेद हो जाता है और पूरा मुरझा जाता है, तो ऐसे स्थिति था। ये देखकर आयुध धुम्न समझ गए कि आरुण किस प्रकार उनके वचन को पालन करने के लिए वो अपना शरीर का परवाह नहीं किया। अगर देखा जाए, हम अगर उनके जगह में होते तो हम आके गुरुजी को बोलते, गुरुजी ये तो हो नहीं सकता है, हाँ। लेकिन यहाँ आरुणी वो भले रोक नहीं पाए, प्रयास किए और सो गए, फिर भी पानी जा रहा था, लेकिन वो उसमें विचलित नहीं हुए, अड़क रहे कि किस प्रकार पानी रोकना है। तो इस प्रकार उन्होंने गुरु के कृपा को प्राप्त किया। तो वहाँ एक श्लोक में कहा गया कि किस प्रकार के आयुध धुम्नों ने उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहते हैं तस्माद तथा मद वचनम अनुतिष्ठति, के हे आरुणि तुमने मेरी वचन को पालन किया, इसलिए तस्माद श्रेय एवा प्रति, कहते हैं इसलिए मैं श्रेय तुम्हें बताता हूँ, सर्वे चते वेद शास्त्र प्रति भाष्यन्ति सर्वाणि धर्म शास्त्राणि ज्ञाति, कहते हैं कि स्वतः तुम्हें सभी प्रकार की वेद शास्त्र की प्राप्त हो जाएगा और धर्म शास्त्र के ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं आरुणि गुरु के वचनों को निभाकर वो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन गए, सभी शास्त्र, इसलिए कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर वो ज्ञान उनके हृदय में प्रकाश करते हैं। इसी प्रकार संदीपनि मुनि भी भगवान की सेवा से खुश होकर बताए थे, एता ही सद शिष्यम कर्तव्यम गुरु निष्कृतम जत प्रधु विशुद्धम भावेन सर्व अर्थ आत्मसमर्पणम गुरु। हे भगवान को कहे कि ये सद शिष्य का लक्षण है कि वो किस प्रकार सर्व
अर्थ आत्मसमर्पणम गुरु, जो पूर्णतया पूर्ण कहते हैं कि सर्व अर्थ यानी संपत्ति या दूसरे भी अर्थ है या और आत्मा पूर्णतः समर्पण हो जाता है उस शिष्य के हृदय में भगवत कृपा या भगवत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे निज सम। कि दीक्षा के समय में जब शिष्य आत्मसमर्पण करता है उसी समय में कृष्ण तारे करे निज सम, उसी समय कृष्ण से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हम तो दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा तो होता है लेकिन हमारा आत्मसमर्पण कितना है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि कितने हम गुरु के प्रति समर्पित है। तो जितने प्रतिशत हमारा शरणागति होगा गुरु के प्रति उतने प्रतिशत हमारे ऊपर गुरु कृपा प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ इस श्लोक में हम देख सकते हैं किस प्रकार जो यहाँ जितने भी ये श्लोक बताया ये सब गुणों से पूर्णतया सुशोभित थे बलि महाराज और पूर्ण शरणागत होकर, क्योंकि मर गए थे बलि महाराज और मरने के बाद भी उनके गुरु उनको जीवित कराए, संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने उन्हें जीवित कराया जिसके कारण उनका जीवन पूर्ण परिवर्तन हो गया और पूर्वे जो कुछ किया था उसको सब भूल गए। अभी वो पूर्ण समर्पित होकर शुक्राचार्य के हर वचन को पालन किए, उनमें कोई प्रश्नवाचक नहीं था, इसलिए उन्होंने गुरु कृपा प्राप्त किए। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम भौतिक जीवन बिताते हुए यहाँ जब आए तो हमारा जीवन भी हम भौतिक जीवन में पूर्णतः मर गए थे, यहाँ जब आकर हम गुरु से दीक्षा लेते हैं पुनः हमको जीवन प्राप्त हुआ है। तो इस दृश्य को हमारे सामने रखकर हमको ये सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने जीवन को भौतिक जीवन को त्याग कर पूर्णतया आध्यात्मिक जीवन यापन करें, इसके लिए ये प्रयास करना है। तो इसलिए हमको पूर्ववर्ती गुरु या आचार्य या सीनियर जो वैष्णव है वरिष्ठ वैष्णव है उनके शरणागत होकर उनके निर्देशन के द्वारा हमको जीवन में इस शिक्षा को अपनाना चाहिए जिसके कारण हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हमको पुनः जीवन प्राप्त हुआ है। तो इस जीवन को जैसे सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से होकर वो आ रहे थे पुरी के ओर, उस समय उनके शरीर में अनेक अनेक जगह से पानी पीने के कारण अनेक प्रकार की फोड़े आ गए और पस भर गए और जिसके कारण वो सोचे कि मैं क्या करूंगा, मेरा शरीर को त्याग दूंगा, ये जीवित रहकर कोई मतलब नहीं है, मैं रथ यात्रा में रथ के नीचे मेरा शरीर त्याग दूंगा। तब जैसे पुरी में पहुंचे महाप्रभु के पास तो महाप्रभु उनको डांटते हैं, ते सनातन ये तुम्हारा मन में कैसा विचार कैसा आया, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, इस शरीर को लेकर मैं अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे ये शरीर अर्पण कर दिए हो, इसलिए तुमको ये अधिकार नहीं है कि तुम तुम्हारा शरीर को नष्ट करो। इसलिए गुरु के शरणागत होने से दीक्षा लेने के हमारे जीवन में और कुछ नहीं रहता है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब हम गुरु के चरण में समर्पित हो जाते हैं तब हमारे कोई विषय चिंतन नहीं रहना चाहिए, गुरु और वैष्णव के आदेश ही हमारा जीवन का मूल आदेश होना चाहिए और जिससे हम हमारा जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं और गुरु के कृपा से पुनः हम उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए ये शरणागति बहुत आवश्यक है, पहला शरणागति है। आदुपाद गुरुपादाश्रय, गुरु की पहले पादाश्रय लेना चाहिए। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जय श्री श्री गौर निताय की,
जय।
तो गुरु के शरणागति या भगवत शरणागति का यह पहला सोपान है कि हम गुरु पादाश्रय। तो हमारा गुरु पादाश्रय होने के बाद क्या है, गुरु पादाश्रय दीक्षा, दीक्षा के द्वारा गुरु को समर्पित होते हैं। और फिर स्वधर्म पुच्छा, हमारा स्वधर्म क्या है, हमको क्या करना है, ये गुरु को पूछना चाहिए। गुरु का आदेश क्या है हमारे जीवन में, तो उस गुरु के आदेश को ही हमारा जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। जब हम उस आदेश को पालन करेंगे तो फिर हमारा जो है कल्याण हो सकता है। तो ये शरणागति होने के लिए ये प्रोसेस है, इससे द्वारा ही हम शरणागति होने का मार्ग पे चल पाएंगे। नहीं तो सामान्य देखा जाए हमारे जीवन में हम शरणागत नहीं होना चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं। तो स्वतंत्र जीव कभी जो स्वतंत्र होते हैं वो दुख प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें शरणागति जो गुरु के चरण में होना ये आवश्यक है। और इस शरणागति से ही हमारा जो आध्यात्मिक जीवन की रास्ता खुल जाता है। तो बलि महाराज के जीवन में ये शिक्षाएं मिलती हैं, किस प्रकार वो गुरु के कृपा से पूरी तरह शक्तिशाली बने। तो आगे हम देखेंगे किस प्रकार उन्होंने उनके जगह यज्ञ स्थल में भगवान वामन देव प्रकट होंगे। तो उनके बलि महाराज की जो प्रथम गुरु है वो प्रहलाद महाराज है। उन्होंने प्रहलाद महाराज से अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त किए। और इसके कारण जब हम देखेंगे, जब भगवान वामन देव को बंदी बनाते हैं उस समय, तो इंद्र को प्रताड़ना करते कहते हे इंद्र, तुम भौतिक सुख के लिए, इंद्र पद के लिए तुम इतने जो आतुर हो, देखो तुमने भले ही इंद्र पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन मैंने अभी भगवान के द्वारा बंदी बनने के बाद भी उनके चरण आश्रय होकर उनके चरण प्राप्त किया हूं। इसलिए हम देख सकते हैं हमारे इस ग्रंथों में मूलतः जितने भी प्रसंग आते हैं वो किस प्रकार हमें समर्पित होना है भगवत भगवान के प्रति, ये दर्शाता है। इसलिए इस श्लोकों में मूलतः बताया गया है किस प्रकार बलि महाराज ने अपना आत्मसमर्पण किया, और इसका वो आचार्य है। बलि महाराज जो है आत्मसमर्पण का आचार्य है, और पूर्णतया भगवान को भी अपना आत्मसमर्पण किया, नवदा भक्ति का जो आखिरी स्तर है उसको प्राप्त कर लिया। तो इसलिए हमको यहाँ शिक्षा मिलता है कि किस प्रकार गुरु के निर्देशन को पालन करते हुए हम भगवान की कृपा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अध्याय आगे और भी वर्णन होगा तो भक्त लोग करेंगे। तो इसलिए आप सब वैष्णव आशीर्वाद करें, जिसके हमारे जीवन में हम साधु गुरु वैष्णव के प्रति शरणागत होकर भक्ति करें, कोई इच्छाएं ना रहे। तो यहाँ मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की कुछ कोई टिप्पणी प्रश्न?
सुप्रभु जी बहुत धन्यवाद आपका। हमने इस विषय एक ही विषय के ऊपर कि गुरु की शरणागति में जाना कितना आवश्यक है समझाया। सुप्रभु जी ऐसा एक प्रश्न था कि जैसे बता रहे कि गुरु की शरणागति में जाएंगे तो गुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, फिर आपने अरुण के उदाहरण से बताया कि कैसे उसको संस्कृत में श्लोक बताया आपने कि उनको गुरु ने आज्ञा दिया, आशीर्वाद दिया कि आपको सब वेद शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, और आपने बताया कि भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो विशेष रूप से ये स्पष्ट समझ नहीं आता कि क्या प्राप्त हो जाएगा या क्या प्राप्त करने की इच्छा या आशा से सेवा में करना है या क्या प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कई बार कुछ तथाकथित भौतिक जो आध्यात्मिक जैसी चीजें लग रही हैं पर भौतिक हैं, या अभिलाषा या उनको प्राप्त करके जो एक चेष्टा है तो वो भौतिक जैसी है लेकिन लग रही है आध्यात्मिक, तो वो प्राप्त करके भी कई बार ऐसे व्यवहार में देखने को मिलता है कि ऐसे लगता है कि गुरु की कृपा प्राप्त हो गई और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई। तो क्या प्राप्त हो जाएगा गुरु की कृपा से, ये अगर आप कृपा कर समझाएंगे तो अच्छा रहेंगे। धन्यवाद।
जैसे कि गुरु कृपा के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और आध्यात्मिक भी भौतिक भी। जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में देख सकते हैं, उनका जीवन में पहले गुरु कृपा हुआ, नारद मुनि का कृपा, ठीक है, कारण उनका इच्छा तो था, इसलिए भौतिक इच्छा भी उनका पूर्ण हुआ और आध्यात्मिक भी हुआ। तो गुरु के कृपा से दोनों इच्छा पूरा हो सकता है। और यहाँ भी देखा जाए, बलि महाराज का ऐसा कोई स्वर्ग प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं था, वो स्वर्ग के लिए अगर यज्ञ इच्छा रहता तो वो जब भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए तो उस समय वो अपने गुरु को त्याग नहीं करते थे। तो हमारे जीवन में गुरु के कृपा से दोनों वस्तु प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमारा इच्छा भी प्रबल जिसमें है वो हमको अच्छे से प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमारा इच्छा पे भी डिपेंड करता है तो हम कौन सी चीज को ग्रहण करते हैं। तो गुरु की कृपा से दोनों चीज प्राप्त हो सकता है। प्रभु जी कुछ बता सकते।
जब गुरु कृष्ण का सेवा करने लगते हैं, भले हो इच्छा हो लेकिन इच्छाओं को कैरी करते हुए सेवा करेंगे तो दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम। उन इच्छाओं को छोड़ करके तब सेवा करना पड़ेगा, उस इच्छाओं के लिए सेवा नहीं, सेवा करना इसलिए। ध्रुव महाराज, नारद जी ने जैसे ध्रुव महाराज को बताया था यथावत उन्होंने फॉलो किया, और एंड ऑफ द डे जब भगवान प्रकट हुए तब उन्हें ग्लानी हुई, हाय हाय मैं किस लिए ऐसा कर रहा था, न कि वे साथ में ढो रहे थे। भक्ति एकांतिक होनी चाहिए, भक्ति में मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो एकांतिक भाव से ध्रुव महाराज नारद जी के आदेशों का पालन कर रहे थे। उसी प्रकार से जब गुरुपाद आश्रय हम ग्रहण कर लेते हैं तो गुरुमुख पद्मवाक्य चितते करियाख्य आरणा करीबो मने आशा। वो जो आशा थी पहले थी, ठीक है इसका ज्वाइन करेंगे तो यही मिलेगा यही मिलेगा, आशा हो सकती है, लेकिन एक बार दीक्षा ले लिए तो उसके बाद वो आशा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम, कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो हाथ में लगेगा, श्रम एवं ही केवलम। मिश्रण भक्ति हो सकता है लेकिन ये भौतिक आसक्ति को रख करके नहीं, भले आसक्ति हो लेकिन उसी पर ध्यान करोगे तो माला जब को तो भक्ति कहां से हो जाएगी। लेकिन हम लोगों के अब बुद्धि है, प्रयास तो करना चाहिए उसको छोड़ने के लिए। अब जब करते हो लेकिन हमेशा दूसरा चीज सोचते रहते हो तो श्रम में ही केवल। भागवतम कहता है नोत्पाद जद यद रतिम श्रम एव ही केवलम, धर्म स्वनिष्ठा विश्वक्सेन कथा सुयत। विश्वक्सेन कथा सुनने का मतलब रति उत्पन्न होना चाहिए, भले भौतिक इच्छा हो शुरू में लेकिन सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो भगवत कथा और नाम में इतना शक्ति है कि वो कॉन्शसनेस साफ होता रहेगा, चेतो दर्पण मार्जन होता रहेगा। लेकिन मार्जन ही नहीं करोगे तो श्रम ही वही केवल व्यर्थ श्रम है।
हरे कृष्ण। पर जी एक और छोटा सा प्रश्न है, जैसे आप बता रहे थे गुरु शरणागति में पूरी तरह चले जाना चाहिए और फिर जो गुरु बोले वो करना चाहिए वगैरह, तो कई बार ऐसे भी सुनने में मिलता है, जैसे एक दो भक्त कह रहे थे कि एक बार कि मैं तो अभी उतना शरणागत नहीं हूं, तो इसलिए मेरे को इतना आप जो है पूछ वगैरह मत करो, मैं तो अभी इतना शरणागत नहीं हूं और मैं जो कर रहा हूं बस मैं प्रयास कर रहा हूं, पर मैं इतना शरणागत नहीं हूं, लेकिन करते हैं सब फिर जो मतलब बिल्कुल अपने ऐसा लगता है बाह्य दृष्टि से तो एटलीस्ट कि अपने जो इच्छा है वैसे ही कर लेते हैं और बोल देते हैं ऐसे, जब प्रश्न उठता है कि मैं तो अभी इतना शरणागत नहीं हूं, मैं हो रहा हूं अभी, तो ये ठीक है ना, क्या करना चाहिए?
हमको प्रयास करना चाहिए कि शरणागति हो, गुरु के जो वचन को पालन करने के लिए उसको प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम चेष्टा करना ये महत्वपूर्ण है। हम कोई सोचेगा नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं पालन नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु को देखने से शिष्य छुपते हैं, हाँ गुरु आ रहे देख के दूसरे साइड ले लेते हैं, तो सोचते हैं कुछ बोल देंगे पालन करने को या डांटेंगे, हाँ इसलिए छुप जाते हैं, तो ऐसे शिष्य का कल्याण नहीं होगा। तो भले ही गुरु के वचन को पालन नहीं कर पा रहा है, अच्छा से प्रयास तो कर रहा है, वो जो पालन नहीं कर रहा है वो डर के मारे गुरु के पास नहीं जाता है, उससे अच्छा जो गुरु का सुनकर पालन करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो ये प्रयास से गुरु और भगवान की कृपा से उसको सफलता प्राप्त होगा। लेकिन कोई अगर प्रयास ही नहीं करेगा हाँ तो उसको कैसे प्राप्त करेगा?
हरे कृष्णा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक विरोधाभास आ रहा है, जैसे बलि महाराज जी ने गुरु को त्याग कर दिए, तो यहाँ आप बता रहे हैं कि गुरु का कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गुरु को त्याग करते हुए भी वो एक आचार्य पद में आचार्य पद को प्राप्त किए, जो शरणागति के आचार्य बने, तो इसका क्या?
तो यहाँ पहले इस ये जो अध्याय में वो बताया गया है कि वो पूर्णतः समर्पित होकर वो शुक्राचार्य की सेवा किए, तभी वो उनको शुक्राचार्य आदेश से स्वर्ग को विजय प्राप्त किए, फिर विजय प्राप्त करने के बाद उनके ही आदेश से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू किए, फिर से देवताओं के को जो बलि महाराज ने इंद्र पोस्ट को ले लिया था, उस पोस्ट को फिर से इंद्र को देने के लिए फिर से भगवान प्रकट हुए, तो वहां उस जगह फिर से बलि महाराज ने वहां अपने गुरु को इसलिए त्याग किया कि उनका जो वचन था वो भगवान से दूर कर रहा था, वो भगवान को प्राप्ति के रास्ते में बाधक बन रहे थे। यहाँ भगवान भिक्खु बन के आए हैं, उनको मांग रहे समर्पित होने को कह रहे हैं, तो गुरु का ये कार्य होना चाहिए कि वो शिष्य को भगवान के प्रति समर्पित कराए, लेकिन यहाँ शुक्राचार्य वो भगवान से दूर कर रहे थे, वो स्वर्ग सुख हाँ ये सब सुख के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो भौतिक चीजों के लिए प्रेरित कर रहे थे, इसलिए वो भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने गुरु के ये वचन को त्याग किए, उनके फिर शुक्राचार्य श्राप देते हैं, तो ये त्याग जो है वो उनके जो वचन है जो भगवान से दूर होने का उसको त्याग किए। प्रभु जी परन और बलि महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो पूर्णतया मां भागवत हैं, समझ रहे थे कि शुक्राचार्य क्या कह रहे हैं। अब बलि महाराज का इमिटेट कर करके
हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मान लो कभी कभी गुरु जी कहते हैं नहीं तुम मंदिर में सेवा मत करो, तुम जाओ अपने माता पिता का भी सेवा करो। तो ये नहीं कह रहे तो गुरु तो शुक्राचार्य के समान हो गया, हमको बोल रहा है कि माता पिता का सेवा करो मंदिर में, सेवा त्याग देना चाहिए। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, उसमें कुछ हायर पर्पस हो सकता है। यहां तक बलि महाराज का बात है, वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित थे और वे समझ रहे थे कि शुक्राचार्य जो कह रहे हैं उनमें उनका भौतिक कामना है। बलि महाराज इस बात को समझ गए कि इनमें भौतिक इच्छा है, इसलिए वे त्यागे। और ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं तीन स्थान पर गुरु को त्याग सकते हैं, यदि कोई मायावाद सिद्धांत प्रतिपादित करे तब, या कोई बिल्कुल शास्त्र वर्जित कार्यों में लग जाए, पाप कर्म में लग जाए तब, या कोई हमें भगवान के शरण में जाने से रोके तब। लेकिन क्रंचिंग पॉइंट है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि बलि महाराज समझ गए कि शुक्राचार्य में भौतिक इच्छा है, वो अपने मेंटेनेंस को लेकर गया चिंतित हैं कि भगवान ले लेंगे तो अपना क्या होगा, इसलिए वे त्यागे थे। वो क्रंचिंग पॉइंट है।
और एक वहां भीष्म देव भी युद्ध कर लिए थे कि जब भीष्म देव को उनके गुरु आदेश दिए कि सब विवाह करो तो वहां भी युद्ध किए थे।
वो विवाह के लिए बाप को और गुरु को ना कह सकते हो कोई बात।
हरे कृष्ण। प्रभु जिस तरह से हमें बताया कि हमको गुरु का आवश्यकता है, गुरु करना चाहिए, कई बार भौतिक संसार में हम लोग हैं तो हमारा मन विचलित होता है अपने गुरु से, अपने गुरु को हम त्याग देते हैं और सोचते हैं जो भी हम कर रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ दिया, अभी मुझे ज्ञान आ गया है तो अभी ज्ञान है तो अभी मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप से सब कुछ कर सकता हूं, तो उसके लिए आप बताइए क्या करना चाहिए।
तो यह हमारा अहंकार होता है, इसके कारण जैसे एक भजन में कहा गया है कि अहंकारे मत होइया निताई पाद पासरिया। जो व्यक्ति अहंकार में मत होता है उसके जीवन में जब अपराध होता है हमारे जीवन में वैष्णव के प्रति, फिर ऐसे दशाएं सब घटित होता है। इसलिए हमको जब तक हम विनम्र नहीं होंगे हमारे जीवन में ऐसे मनोभाव आते रहेगा, इसलिए विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। सरल जो सरल भक्त होते हैं वो जल्दी भक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि सरलता ही वैष्णवता है। तो सरल होना चाहिए, जैसे गाय होता है, गाय को अगर लेके मार्केट में बेच देता है तो गाय पूछता नहीं कि क्यों बेच रहा है। तो ऐसे ही शिष्य का जीवन होना चाहिए कि शिष्य के वो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए गुरु के इस पे। जब हमारे जीवन में गुरु के लेकर प्रश्न आ जाए तो वैष्णव के वाक्य पे शंका आ जाए, फिर हमारे जीवन में अपराध शुरू होता है। फिर ऐसे मनोदशा आता है कि हम बड़ा है, हमारा शास्त्र है, गुरु क्या जानता है, फिर ऐसे व्यक्ति जल्दी भक्ति छोड़ देता है, पतन हो जाता है। तो इसलिए हमको जीवन में विनम्र बने रहना चाहिए। हाँ, तो विनम्रता ही हम पूरे संसार को जीत सकते हैं, महाप्रभु के जीवन में देख सकते हैं। जब उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती को भेंट किया, वहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके विनम्रता का प्रदर्शनी से जाके खाली चरण धोने वाले स्थान पे बैठ गए तो पूरे 10,000 शिष्यों के साथ प्रकाशानंद सरस्वती पूर्ण समर्पित हो गए, उनके शिष्य बन गए। जब तक हम पूर्ण समर्पित नहीं होगा, विनम्रता नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में ये अपराध फूलेगा फलेगा, इसलिए विनम्रता बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।